का था, रूह वही रूप नया।
खौफनाक इमारत के भाग एक में आपने सुना कि पिक्चर जाते जाते इमरान फयाज के साथ कहीं चल दिया। फयाज उसे एक ऐसी इमारत में लेकर गया जो पिछले कई सालों से बंद थी। बावजूद इसके उसमें फयाज और इमरान को एक लाश दिखाई पड़ी। लाश पर जख्मों के निशान ऐसा लगता था जैसे नाप कर लगाए गए हैं। ये किसकी लाश है, किसने इसका कत्ल किया, कौन है मुजरिम, ये सब जानने के लिए आइए सुनते हैं भाग दो। दूसरे दिन कैप्टन फयाज ने इमरान को अपने घर बुलाया। हालांकि कई बार के अनुभव ने यह बात साबित कर दी थी कि इमरान वो नहीं है जो जाहिर करता है, ना ही वो अहमक है और ना ही खपती, लेकिन फिर भी फयाज ने उसे मूड में लाने के लिए जज साहब की कानी लड़की को भी बुला लिया। हालांकि वो इमरान की इस हरकत को भी मजाक ही समझा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो थोड़ी तफरीह ही हो जाए। फयाज की बीवी भी इमरान से अच्छी तरह परिचित थी और जब फयाज ने उसे उसके इश्क की दास्तान सुनाई तो हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। फयाज उस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठा इमरान का इंतजार कर रहा था। उसकी बीवी और जज साहब की एक आंख वाली लड़की राबिया भी मौजूद थी। अभी तक नहीं आए इमरान साहब, फयाज की बीवी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। क्या वक्त है, फयाज ने पूछा। 7:30। बस 2 मिनट बाद वो कमरे में होगा, फयाज मुस्कुरा कर बोला। क्यों, ये कैसे? बस उसकी हर बात अजीब होती है, वो इसी किस्म का वक्त तय करता है। उसने 7:32 पर आने का वादा किया था, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त हमारे बंगले के करीब ही खड़ा अपनी घड़ी देख रहा होगा। बड़े अजीब आदमी मालूम होते हैं, राबिया ने कहा। अजीब तरीन कहिए मैडम, इंग्लैंड से साइंस में डॉक्टरेट लेकर आया है, लेकिन उसकी हरकतें वो अभी देख लेंगी। इस सदी का सबसे अजीब आदमी, लीजिए शायद वही है। दरवाजे पर दस्तक हुई, फयाज ने उठकर दरवाजा खोला। दूसरे लम्हे में ड्राइंग रूम में इमरान दाखिल हो रहा था। औरतों को देखकर वो जरा झुका और फिर फयाज से हाथ मिलाने लगा। शायद मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि आज मौसम बड़ा खुशगवार है, इमरान बैठता हुआ बोला। फयाज की बीवी हंसने लगी और राबिया ने जल्दी से काले शीशों वाली ऐनक लगा ली। आपसे मिलिए, आप हैं मिस राबिया सलीम, हमारे पड़ोसी जज की साहबजादी, और आप हैं मिस्टर अली इमरान, मेरे महकमे के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब के साहबजादे। बड़ी खुशी हुई, सलाम, इमरान मुस्कुरा कर बोला। फिर फयाज से कहने लगा, तुम हमेशा गुफ्तगू में गैर जरूरी अल्फाज क्यों ठूंसते रहते हो भाई, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। रहमान साहब के साहबजादे, अरे दोनों साहिबों का टकराव बुरा लगता है, उसके बजाय रहमान के जादे या फिर सिर्फ रहमान जादे कह सकते हो। अरे भाई मैं लिटरेरी आदमी नहीं हूँ, फयाज मुस्कुरा कर बोला। दोनों खवातीन भी मुस्कुरा रही थीं। फिर राबिया ने झुककर फयाज की बीवी से कुछ कहा और वे दोनों उठकर ड्राइंग रूम से चली गईं। बहुत बुरा हुआ, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। क्या, शायद वो बावर्ची खाने की तरफ गई हैं, बावर्ची की मदद के लिए आज कोई है नहीं ना, इसलिए, फयाज ने कहा। तो क्या तुमने उसे भी बुलाया है? हाँ भाई, क्यों ना बुलाता, मैंने सोचा कि इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात हो जाए। अरे मुझे तो बड़ी कोफ्त हो रही है, इमरान ने कहा। क्यों, आखिर उसने धूप का चश्मा क्यों लगाया है? अरे अपना नुक्स छुपाने के लिए। सुनो मियां, दो आंखों वालियां तो मुझे बहुत मिल जाएंगी, यहां तो मामला सिर्फ इस आंख का है। हाय क्या चीज है, किसी तरह उसका चश्मा उतरवाओ वरना मैं खाना खाए बगैर वापस चला जाऊंगा। ए बको मत। अच्छा मैं चला, इमरान उठता हुआ बोला। अरे अजीब आदमी हो, बैठो ना, फयाज ने उसे दोबारा बैठा दिया। चश्मा उतरवाओ, मैं इसका कायल नहीं कि महबूब सामने हो और अच्छी तरह दीदार भी नसीब ना हो। अरे जरा आहिस्ता बोलो, फयाज ने कहा। मैं तो अभी उससे कहूंगा।
क्या कहोगे?
फयाज बौखला गया। यही जो तुमसे कह रहा हूँ।
यार खुदा के लिए कम से कम, अरे क्या बुराई है इसमें? मैंने सख्त गलती की,
फयाज बड़बड़ाया। वाह वाह, गलती तुम करो और भुगतूं मैं?
अरे नहीं फयाज साहब,
मैं उससे कहूंगा कि बराहे करम चश्मा उतार दीजिए, मुझे आपसे मरम्मत हो गई है।
मरम्मत? अरे शायद मैंने गलत लफ्ज बोल दिया है। अरे बोलो भाई, क्या होना चाहिए?
मोहब्बत, फयाज बुरा समूह बनाकर बोला।
अरे जियो,
मोहब्बत हो गई है तो वो इस पर क्या कहेगी?
चांटा मार देगी, फयाज झुंझला कर बोला।
अरे फिक्र ना करो, मैं चांटे को चांटे पर रोक लेने के आर्ट में बखूबी वाकिफ हूँ। तरीका वही होता है जो तलवार पर तलवार रोकने का हुआ करता था।
यार खुदा के लिए कोई हिमाकत ना कर बैठना।
अक्लमंदी की बात करना एक अहमक की खुली तौहीन है। अब बुलाओ ना।
अरे दिल की जो हालत है बयान कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। वाह क्या होता है जुदाई में। अरे वो बोलो ना यार, कौन सा लफ्ज होता है?
अरे मैं नहीं जानता,
फयाज झुंझला गया।
खैर होता होगा कुछ, डिक्शनरी में देख लूंगा। वैसे मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान धूप का चश्मा हायल है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चंद लम्हे खामोशी रही। इमरान मेज पर रखे हुए गुलदान को इस तरह घूरता था जैसे उसने उसे कोई सख्त बात कह दी हो।
आज कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, फयाज ने कहा।
अरे जरूर मालूम हुई होंगी, इमरान अहमकों की तरह सिर हिलाकर बोला।
मगर नहीं, पहले मैं तुम्हें उन जख्मों के बारे में बताऊं।
तुम्हारा ख्याल सही निकला, जख्मों की गहराई बिल्कुल बराबर है।
क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? इमरान ने कहा।
क्यों, किन जख्मों की बात कर रहे हो?
देखो इमरान, मैं अहमक नहीं हूं।
पता नहीं, जब तक तीन गवाह ना पेश करो मेरी तो यकीन नहीं आता।
क्या तुम कल वाली लाश भूल गए हो?
लाश? अरे हाँ याद आया, और वो तीन जख्म बराबर निकले ना? हाँ 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 हाँ
हाँ। तो अब क्या कहते हो? फयाज ने पूछा।
संगो आहन बेनियाजे गम नहीं, देख हर दीवारे दर से सर ना मार।
इमरान ने गुनगुना कर तान मारी और मेज पर तबला बजाने लगा।
तुम संजीदा नहीं हो सकते, फयाद उकता कर बेदिली से बोला।
उसका चश्मा उतरवा देने का वादा करो, मैं तो संजीदगी से गुफ्तगू करने को तैयार हूँ।
अरे कोशिश करूंगा बाबा, मैंने उसे नाहक बुलाया।
दूसरी बात यह है कि खाने में कितनी देरी है?
शायद आधा घंटा, वो एक नौकर बीमार हो गया है।
खैर हाँ, जज साहब से तुम्हारी क्या बातें हुई?
अरे वही बताने जा रहा था,
कुंजी उनके पास मौजूद है, और दूसरी बात यह है कि वो इमारत उन्हें विरासत में नहीं मिली थी।
फिर
इमरान ध्यान और दिलचस्पी से सुनता रहा। वो दरअसल उनके एक दोस्त की मिल्कियत थी और उस दोस्त ने ही उसे खरीदा था। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन रोजगार की फिक्र ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज से 5 साल पहले अचानक जज साहब को उसका एक खत मिला जो इसी इमारत से लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसकी हालत बहुत खराब है और शायद वो जिंदा ना रह सके, लिहाजा वो मरने से पहले उनसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता था। तकरीबन 15 साल पहले जज साहब को उस दोस्त के बारे में कुछ मालूम हुआ था, उनका वहां पहुंचना जरूरी था। बहरहाल वे वक्त पर ना पहुंच सके, उनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था। मालूम हुआ कि वहां तन्हा ही रहता था वो। हाँ, तो जज साहब को बाद में ये मालूम हुआ कि मरने वाले ने वो इमारत कानूनी तौर पर जज साहब के नाम कर दी थी, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि वो उनसे क्या कहना चाहता था। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला,
हाँ और उस कमरे के प्लास्टर के बारे में कुछ पूछा था?
जज साहब ने उसे लाइल्मी जाहिर किया। अलबत्ता उन्होंने बताया कि उनके दोस्त की मौत इसी कमरे में हुई थी।
कत्ल?
इमरान ने पूछा।
नहीं, कुदरती मौत थी, गांव वालों के बयान के मुताबिक वो अरसा से बीमार था। उसने इस इमारत को किससे खरीदा था, इमरान ने पूछा।
अरे आखिर इससे क्या बहस, तुम इमारत के पीछे क्यों पड़ गए हो?
महबूबा यक चश्म के वालिद बुजुर्गवार से जरा ये भी पूछिए।
अरे जरा आहिस्ता, अजीब आदमी हूं अगर उसने सुन लिया तो।
सुनने दो, अभी तो मैं उससे अपने दिल की हालत भी बयान करूंगा।
यार इमरान, खुदा के लिए तुम कैसे आदमी हो यार, फिजूल की बातें मत करो।
जरा जज साहब से वो कुंजी मांग कर लाओ, इमरान बोला।
अब क्या अभी?
अभी और इसी वक्त। फयाज उठकर चला गया। उसके जाते ही वे दोनों खवातीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं।
अरे कहाँ गए,
फयाज की बीवी ने पूछा।
शराब पीने,
इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा।
क्या,
फयाज की बीवी मुंह फाड़ कर बोली और फिर हंसने लगी।
खाना खाने से पहले हमेशा थोड़ी सी पीते हैं ना, इमरान ने कहा।
आपको गलत फहमी हुई है, वो एक टॉनिक है।
टॉनिक की खाली बोतल में शराब रखना मुश्किल नहीं।
ओह, लड़ाना चाहते हैं आप, फयाज की बीवी हंस पड़ी।
क्या आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है,
इमरान ने राबिया को संबोधित किया।
जी नहीं,
राबिया नर्वस नजर आने लगी।
ओ नहीं नहीं, वो इनको तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती ना, इसीलिए चश्मा,
फयाज की बीवी जल्दी से बोली।
ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मैं अभी क्या सोच रहा था।
आप गालिबन ये सोच रहे थे कि फयाज की बीवी बड़ी बेकार है, अभी तक खाना तैयार नहीं हो सका।
अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं, मेरे साथ तो बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि मैं जल्दी से भूल जाता हूँ, सोचते सोचते भूल जाता हूँ कि सोच क्या रहा हूँ।
हो सकता है मैं अभी ये भूल जाऊं कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ।
मेरे घर वाले तो हमेशा मुझे टोकते ही रहते हैं।
मुझे मालूम है, फयाज की बीवी मुस्कुराई। मतलब ये कि अगर मैं कोई हिमाकत कर बैठूं तो बिना तकल्लुफ टोक दीजिएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि फयाज वापस आ गया। अब खाने में कितनी देर है भाई, उसने अपनी बीवी से पूछा।
बस जरा सी,
फयाज ने कुंजी का कोई तज़किरा नहीं किया और इमरान के अंदाज से भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो भूल ही गया हो कि उसने फयाज को कहाँ भेजा था। थोड़ी देर में खाना आ गया। खाने के दौरान इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबने देखा लेकिन किसी ने पूछा नहीं। खुद फयाज, जो इमरान की रग रग से वाकिफ होने का दावा करता था, कुछ ना समझ सका। फयाज की बीवी और राविया तो बार बार कनखियों से उसे देख रही थी, आंसू किसी तरह रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। खुद इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे भी इन आंसुओं का इल्म ना हो। आखिर फयाज की बीवी से बर्दाश्त ना हो सका और वो पूछ ही बैठी,
क्या किसी चीज में मिर्चें ज्यादा हैं?
नहीं तो।
तो फिर ये आंसू क्यों बह रहे हैं?
आंसू कहाँ? इमरान अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला,
लाहौल विला कुवत, शायद वही बात हो, मुझे कतई एहसास ही नहीं हुआ।
क्या बात, फयाज ने पूछा।
दरअसल मुर्ग मुसल्लम देखकर मुझे अपने अजीज की मौत याद आ गई।
क्या,
मुर्ग मुसल्लम देखकर?
फयाज की बीवी हैरत से बोली।
जी हाँ, भला मुर्ग मुसल्लम देखकर क्यों?
दरअसल जहन में दोजख का तसव्वुर था, मुर्ग मुसल्लम देखकर आदमी के मुसलमान का ख्याल आ गया।
मेरे उन अजीज का नाम असलम है, मुसलमान पर असलम आ गया और फिर उनकी मौत का ख्याल आ गया। फिर सोचा कि अगर वे दोजख में फेंके गए तो असलम मुसल्लम, माजल्लाह।
अरे यार अजीब आदमी हो, फयाज झुंझला कर बोला। जज साहब की लड़की बेतहाशा हंस रही थी।
कब इंतकाल हुआ उनका,
फयाज की बीवी ने पूछा।
अभी तो नहीं हुआ है,
इमरान ने सादगी से कहा और खाने में मशगूल रहा।
यार मुझे सच में डर है कि तुम पागल ना हो जाओ।
नहीं नहीं, जब तक कोका कोला बाजार में मौजूद है मैं पागल नहीं हो सकता।
क्यों,
फयाज की बीवी ने पूछा।
पता नहीं,
बहरहाल महसूस तो यही करता हूँ। खाना खत्म हो जाने के बाद भी शायद जज साहब की लड़की वहां बैठना चाहती थी लेकिन फयाज की बीवी उसे किसी बहाने से उठा ले गई। शायद फयाज ने उसे इशारा कर दिया था। उनके जाते ही फयाज ने इमरान को चाबी पकड़ा दी और इमरान थोड़ी देर तक उसका जायजा लेने के बाद बोला, अभी हाल ही में इसकी एक नकल तैयार की गई है। इसके सुराख के अंदर मोम के जर्रे हैं, मोम का सांचा, समझते हो ना? रात अंधेरी थी और आसमान में स्याह बादलों के टुकड़े चक्कर लगाते घूम रहे थे। कैप्टन फयाज की मोटरसाइकिल अंधेरे का सीना चीरती हुई चिकनी सड़क पर फिसलती जा रही थी। कैरियर पर इमरान उल्लू की तरह बैठा था, उसके होंठ भींचे हुए थे और नथुने फड़क रहे थे। अचानक वो फयाज का कंधा थपथपा कर बोला, देखो ये तो तयशुदा बात है कि किसी ने एक आंख वाली के वालिद की कुंजी की नकल तैयार करवाई है। लेकिन आखिर क्यों? पूछ कर बताऊंगा। किससे? नीले आसमान से, तारों भरी रात से, हौले हौले चलने वाली ठंडी अदाओं से, अरे लाहौल वाला कुव्वत, हवाओं से। फयाज कुछ ना बोला, इमरान बड़बड़ाता रहा। लेकिन शहीद मियां की कब्र की साफ सफाई करने वाले की कुंजी उसको हासिल करना आसान रहा होगा। बहरहाल हमें इस इमारत की तारीख मालूम करनी है, शायद हम उसके आसपास पहुंच गए हैं। मोटरसाइकिल रोक दो। फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। इंजन बंद कर दो। फयाज ने इंजन बंद कर दिया। इमरान ने उसके हाथ से मोटरसाइकिल लेकर एक झाड़ी में छुपा दी। अरे आखिर करना क्या चाहते हो? फयाज ने पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे साथ लिए क्यों फिरते हो? इमरान बोला। वो कत्ल जो इमारत में हुआ था। कत्ल नहीं, हादसा कहो। हादसा? क्या मतलब? फयाज हैरत से बोला। मतलब के लिए तो तुम देखो डिक्शनरी, पेज 112। वैसे 112 पर बेगम पारा याद आ रही हैं। 112 बेगम पारा। बेगम पारा के साथ अमृत धारा जरूरी है, वरना डेविड की तरह चंदिया साफ। फयाज झुझला कर खामोश हो गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले पूरी इमारत का चक्कर लगाया, फिर मुख्य दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। ओह, ताला तो बंद है, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। कैसे देख लिया तुमने? मुझे तो कुछ सुझाई ही नहीं दिया, फयाज ने कहा। क्योंकि तुम उल्लू नहीं हो। चलो इधर से हटो, इमरान बोला। दोनों वहां से हटकर फिर मकान के पीछे आए। इमरान ऊपर की तरफ देख रहा था। दीवार काफी ऊंची थी। उसने जेब से टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डालने लगा। मेरा बोझ संभाल सकोगे? उसने फयाज से पूछा। मैं समझा नहीं। तुम्हें समझाने के लिए तो बाकायदा ब्लैकबोर्ड और चौक चाहिए होता है। मतलब ये कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्या ये समझते हो कि कोई अंदर मौजूद है? फयाज ने कहा। नहीं, यूं ही झक मारने का इरादा है। चुपचाप रहो, चलो बैठ जाओ। मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होकर। फिर भी ये दीवार तो बहुत ऊंची है यार। तुम फिजूल बहस ना करो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ, इमरान उकता गया। मजबूरन फयाज दीवार की जड़ में बैठ गया। अरे अम्मा जूते तो उतार लो, फयाज ने कहा। लेकर भागना मत, इमरान ने कहा और जूते उतार कर उसके कंधों पर खड़ा हो गया। चलो अब उठो। फयाज आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। इमरान का हाथ रोशन दान तक पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे में वो बंदरों की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। फयाज मुंह फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि इमरान आदमी है या शैतान। क्या ये वही अहमक है जो कभी कभी किसी केंचुए की तरह बिल्कुल बेजरर मालूम होता है? जिन रोशन दानों की मदद से इमरान ऊपर पहुंचा था, उन्हीं के जरिए दूसरी तरफ उतर गया। चंद लम्हे वो दीवार से लगा खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से कई कदमों की आहटें मिल रही थी। और फिर उसे ये मालूम कर लेने में मुश्किल ना हुई कि वे अपरिचित आदमी उसी कमरे में थे जिसमें उसने लाश देखी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजों से मोमबत्तियों की हल्की पीली रोशनी छन रही थी। उसके अलावा दालान में बिल्कुल अंधेरा था। इमरान दीवार से चिपका हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी नजर शहीद आदमी की कब्र की तरफ उठ गई। उसका पत्थर ऊपर उठ रहा था। पत्थर और फर्श के बीच की जगह में हल्की सी रोशनी थी और इस जगह से दो खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी। इमरान सहम कर रुक गया। वो आंखें फाड़े कब्र की तरफ देख रहा था। अचानक कब्र से एक चीख बुलंद हुई। चीख थी या किसी ऐसी बंदरिया की आवाज जिसकी गर्दन किसी कुत्ते ने दबोच ली हो। इमरान झपट कर बराबर वाले कमरे में घुस गया। वो जानता था कि इस चीख की प्रतिक्रिया दूसरे कमरे वालों पर होगी। वो दरवाजे में खड़ा कब्र की तरफ देख रहा था। पत्थर अभी तक उठा हुआ था और वे खौफनाक आंखें अब भी चिंगारियां बरसा रही थी। दूसरी चीख के साथ ही बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक चीख फिर सुनाई दी जो पहले से अलग थी। शायद ये उन्हीं परिचित आदमियों में से किसी की चीख थी।
भूत, भूत,
कोई कांपती हुई आवाज में बोला और फिर ऐसा लगा जैसे कई आदमी मुख्य दरवाजे की तरफ भाग रहे हों। थोड़ी देर बाद सन्नाटा हो गया। कब्र का पत्थर बराबर हो गया। इमरान जमीन पर लेटकर सीने के बल रेंगता हुआ मुख्य दरवाजे पर बढ़ा। कभी कभी वो पलट कर कब्र की तरफ भी देख लेता था लेकिन पत्थर फिर नहीं उठा। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। इमरान अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद फिर लौट पड़ा। लाश वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था लेकिन अब वहां अंधेरे की हुकूमत थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद करके टॉर्च निकाली लेकिन रोशनी होते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खुदा तुम्हारी भी मगफिरत करे। ठीक उसी जगह जहां वो पहले भी एक लाश देख चुका था, दूसरी पड़ी हुई दिखाई दी। उसकी पीठ पर भी तीन जख्म थे जिनसे खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। इमरान ने झुक कर उसे देखा। ये एक हट्टा कट्टा और काफी खूबसूरत जवान था और लिबास से किसी ऊंची सोसाइटी का शख्स मालूम होता था। आज उनकी कल अपनी बारी है, इमरान साधुओं के अंदाज में बड़बड़ाता हुआ सीधा हुआ। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जो उसने मरने वाले की मुट्ठी से बमुश्किल निकाला था। वो चंद लम्हे उसे टॉर्च की रोशनी में देखता रहा, फिर अर्थपूर्ण अंदाज में सिर हिलाकर उसने कागज के उस टुकड़े को कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। कमरे के बाकी हिस्सों की हालत वैसी ही थी जो उसने पिछली बार देखी थी। कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर पिछली दीवार से नीचे उतर गया। आखिरी रोशनदान पर पैर रखकर उसने छलांग लगा दी। तुम्हारी खुसूसियत भी आज ही मालूम हुई, क्या अंदर किसी बंदरिया से मुलाकात हो गई है? फयाज आहिस्ता से बोला। आवाज पहुंची थी यहां तक? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने इस तरफ कोई बंदर तो नहीं देखे। इनके अलावा कोई और दूसरी आवाज? हाँ, शायद तुम डरकर चीखे थे, फयाज बोला। लाश इसी वक्त चाहिए या सुबह? इमरान ने पूछा। लाश? फयाज उछल पड़ा। क्या कहते हो, कैसी लाश?
किसी शायर ने दो गजला अर्ज कर दिया है। अरे दुनिया के अक्लमंद अहमक, साफ साफ कहो, फयाज झुंझला कर बोला। एक दूसरी लाश, तीन जख्म, जख्मों का फासला 5 इंच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गहराई भी बराबर ही निकलेगी। यार बेवकूफ मत बनाओ, फयाज परेशान होकर बोला। जज साहब वाली कुंजी मौजूद है, अक्लमंद बन जाओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन ये हुआ किस तरह? उसी तरह जैसे शेर होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे भर्ती का मालूम होता है, जैसे मीर का शेर। मीर के दोनों मजहब को क्या पूछते हो, अब उनने तो कशका खींचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। भला बताओ देर में क्यों बैठा, जल्दी क्यों नहीं बैठा? देर नहीं है वो, देर है, यानी बुतखाना, फयाज ने कहा। फिर बड़बड़ा कर बोला, लाहौल बिलाकूबत, मैं भी किस बेहूदगी में पड़ गया। वो लाश इमारत के किस हिस्से में है?
उसी कमरे में और ठीक उसी जगह जहां पहली लाश मिली थी। लेकिन वो आवाजें कैसी थी, फयाज ने पूछा। ओह ना पूछो तो बेहतर है, मैंने इतना हंसी वाला मंजर आज तक नहीं देखा। यानी
पहले एक गधा दिखाई दिया जिस पर एक बंदरिया सवार थी, फिर एक दूसरा साया नजर आया जो यकीनन किसी आदमी का था। अंधेरे में भी गधे और आदमी में फर्क किया जा सकता है, क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है?
मुझे अफसोस है कि तुम हर वक्त गैर संजीदा रहते हो।
यार फयाज सच कहना, अगर तुम एक आदमी को किसी बंदरिया का मुंह चूमते देखो तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं?
फिजूल वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम।
अच्छा चलो चलो, इमरान उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। वे दोनों सदर दरवाजे की तरफ आए। क्यों खामखा परेशान कर रहे हो?
हाँ, फयाज ने कहा, कुंजी निकालो निकालो।
दरवाजा खोलकर दोनों लाश वाले कमरे में आए। इमरान ने टॉर्च रोशन की, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे इस तरह सिर हिला रहा था जैसे दिमाग पर अचानक गर्मी चढ़ गई हो। लाश गायब थी।
ये क्या मजाक है? फयाज भन्ना कर पलट गया।
बाज अक्लमंद शायर भर्ती के शेर अपनी गजलों से निकाल दिया करते हैं।
यार इमरान, मैं तो बाज आया तुम्हारी मदद से यार।
मगर मेरी जान, ये लो देखो, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का। लाश गायब करने वाले ने अभी खून के ताजा धब्बों का कोई इंतजाम नहीं किया। मिर्जा इफ्तिखार रफी सौदा या तो कोई साहब फरमाते हैं। भाई कातिल हमारी लाश को तशहीर दे जरूर, आइंदा तो ना कोई किसी से वफा करे। वाह वाह वाह। फयाज झुक कर फर्श पर फैले हुए खून को देखने लगा। लेकिन लाश क्या हुई? वो घबराए हुए लहजे में बोला,
फरिश्ते उठा ले गए या फिर मरने वाला बहिश्ती था।
मगर लाहौल विला, बहिश्ती सक्के को भी कहते हैं। ओहो फिरदौसी था। लेकिन फिरदौसी तो महमूद गजनवी के जिंदगी में ही मर गया था, फिर क्या कहेंगे?
अरे भाई बोलो ना यार, तुम मेरा भेजा मत चाटो।
उलझन, जल्दी बताओ क्या कहेंगे?
अरे मेरा सर चकरा रहा है, मुझे दौरा पड़ जाएगा।
जन्नती कहेंगे, इमरान तुमसे खुदा समझे।
जियो जियो, हाँ तो मरने वाला जन्नती था।
और मैं क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं?
यार तुम यही क्यों नहीं रुके? फयाज बिगड़ कर बोला, मुझे आवाज दे ली होती।
सुनो यार, बंदरिया तो क्या, मैंने आज तक किसी मक्खी का भी बोसा नहीं लिया।
इमरान मायूसी से बोला,
अरे क्या मामला है, तुम कई बार बंदरिया का हवाला दे चुके हो। जो कुछ अभी तक तुम्हें बताया बिल्कुल सही था। उस आदमी ने गधे पर से बंदरिया उतारी और उसे कमरे में ले गया, फिर बंदरिया दोबारा चीखी और वो आदमी एक बार, उसके बाद सन्नाटा छा गया, फिर लाश दिखाई दी, गधा और बंदरिया गायब थे।
सच कह रहे हो?
फयाज भराई हुई आवाज में बोला, मुझे झूठा समझने वाले पर कहरे खुदाबंदी क्यों नहीं टूट पड़ता? फयाज थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर सुबह पर रखो। इमरान की नजरें फिर कब्र की तरफ उठ गईं। कब्र का पत्थर थोड़ा उठा हुआ था और वही खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। इमरान ने टॉर्च बुझा दी और फयाज को दीवार की ओट में धकेल दिया। न जाने वो क्यों चाहता था कि फयाज की नजर उस पर ना पड़े।
क्या हुआ?
फयाज कांप कर बोला, बंदरिया, इमरान ने कहा। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि वही चीख एक बार फिर सन्नाटे में लहरा गई।
अरे बाप रे,
फयाज किसी खौफजदा बच्चे की तरह बोला,
आंखें बंद कर लो,
ऐसी चीजों पर नजर पड़ने से हार्ट फेल भी हो जाया करते हैं।
रिवॉल्वर लाए हो?
इमरान ने संजीदगी से कहा।
नहीं, तुमने बताया ही कब था।
हाँ खैर कोई बात नहीं, अच्छा ठहरो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, कब्र का पत्थर बराबर हो चुका था और सन्नाटा पहले से भी कुछ ज्यादा ही गहरा लगने लगा था।
तो आखिर किसकी थी ये दूसरी लाश? फयाज और इमरान क्या सोचकर रात के इस पहर में इस खौफनाक इमारत में अकेले चले आए? किसकी हैं वो दो आंखें जो बार बार कब्र का पत्थर हटाकर सबको घूरती रहती हैं? इन सारे राजों से पर्दा उठाने के लिए सुनिए भाग 3।